जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी
जय जय हो
जय यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौनिताई की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय श्री आमल की व्रत एकादशी महामहोत्सव की जय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा हरे कृष्णा। तो हर एकादशी को जैसा नियम है हम लोग प्रभुपाद लीलामृत से पाठ कर रहे हैं और फिर कुछ विशेष महत्व बताएंगे आज के दिन का। आज जो एकादशी है ये कुछ विशेष एकादशी है और इसका नाम आमल की व्रत एकादशी है, तो बहुत ही विशेष आज का दिन है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, ये घटना प्रभुपाद लीलामृत में 1974 की है, 1974 की है और वृंदावन के मंदिर का उद्घाटन निश्चित हुआ है 15 जुलाई को, 15 जुलाई को जन्माष्टमी का दिन होगा, 15 जुलाई 1974 को जन्माष्टमी के दिन पड़ेगा और प्रभुपाद ने निश्चय किया कि इस दिन वृंदावन मंदिर का उद्घाटन होगा। हालांकि वो हुआ नहीं, उस दिन नहीं हुआ, लेकिन प्रभुपाद ने निश्चित किया था। तो कितना प्रभुपाद चिंता कर रहे हैं और कितना लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं और कितने इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भक्तों को बहुत अच्छी व्यवस्था करनी है और विशेष रूप से प्रसाद वितरण की व्यवस्था और जो सन्यासी आएंगे और भी जो बड़े सम्मानित अतिथि आएंगे तो उनका कैसे स्वागत करना है, उनके रहने की कैसी व्यवस्था करना है, तो ये सब जो है प्रभुपाद लीलामृत में ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, गुरुदास ने इस कौन के सभी केंद्रों को पत्र भेजकर भक्तों को वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया था। तो गुरुदास जो है वृंदावन मंदिर के अधिकारी हैं, तो उन्होंने इस्कॉन के सभी केंद्रों को पत्र भेजा है, जहाँ जहाँ भी केंद्र हैं इस्कॉन के पूरी दुनिया में, गुरुदास ने सब केंद्रों को पत्र भेजा है कि वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया उन्होंने 15 जुलाई को उद्घाटन समारोह है। उसने बंबई और कलकत्ता के आजीवन सदस्यों को आमंत्रित किया, बंबई और कलकत्ता में विशेष रूप से आजीवन सदस्यता की योजना चल रही है, तो प्रभुपाद के निर्देशन में आजीवन सदस्यता की योजना प्रारंभ हुई थी, तो विशेष रूप से बंबई और कलकत्ता क्योंकि इन शहरों में ज़्यादा धनी लोग होते हैं, तो आजीवन सदस्यता प्रभुपाद ने शुरू की थी 501 रुपए से, और 501 बहुत ज़्यादा था उस समय, 501 रुपए बहुत ज़्यादा था, है ना। उस समय प्रभुपाद के सभी ग्रंथ छपे भी नहीं थे, तो उसमें ये भी नियम बनाया गया था कि जो व्यक्ति आजीवन सदस्यता का 501 रुपए देगा तो प्रभुपाद का जितना भी साहित्य अभी तक छपा है तो वो तो उनको मिलेगा ही, और आगे जो छपेंगे वो भी उनको मिलेंगे। तो ये जो है 501 रुपए में है ना, तो 501 कम नहीं है, आप ये मत सोचिए, अभी 35,555 है, तो उस समय 501 भी जो है उतना ही है, मतलब कम नहीं है उस समय के हिसाब से, 1974 की बात है। तो गुरुदास ने वृंदावन से कितनी चिट्ठियां भेजी, आप सोचिए, बंबई के जितने अभी आजीवन सदस्य हैं और कलकत्ता के जितने आजीवन सदस्य हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने अभी हाल में ही आजीवन सदस्यता की योजना प्रारंभ की है, तो ज़्यादा नहीं, कुछ गिने चुने लोग ही हैं, तो उनको पत्र भेजा है गुरुदास ने, और ये भी व्यवस्था की है कि गाड़ियों से उतरने पर उनके लिए मोटर कारों की व्यवस्था कर रखी है, मोटर कार, कि वो दिल्ली में आएंगे, आजीवन सदस्य लोग जो है दिल्ली में आएंगे तो वृंदावन जाने का साधन नहीं है, तो मंदिर की जो अपनी गाड़ी है वो उनको लेने जाएगी दिल्ली से, गुरुदास ने जो है ये व्यवस्था की थी। बंबई से कलकत्ता से जो आजीवन सदस्य आएंगे तो वो दिल्ली में ही उतरेंगे, ट्रेन हो या बस हो जो भी हो, तो वहाँ से इस्कॉन मंदिर की जो मोटर गाड़ी है तो वो जो है मोटर कार, तो वो जो है उनको लेने जाएगी। प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को जन्माष्टमी के अवसर पर वृंदावन आमंत्रित कर रहे थे। लॉस एंजलिस में सैकड़ों भक्तों के सामने भाषण देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम सभी को कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन के लिए वृंदावन आने को आमंत्रित करता हूँ। वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर ये पहला है, वृंदावन भी कृष्ण बलराम मंदिर शायद नहीं है, मंदिर तो बहुत हैं, राधा कृष्ण के मंदिर हैं, लेकिन कृष्ण बलराम मंदिर जो है शायद ही कोई और हो। तो इस समय एकमात्र कृष्ण बलराम मंदिर प्रभुपाद ने वृंदावन में खोला है। तो लॉस एंजलिस में प्रभुपाद ने भाषण देते हुए सैकड़ों लोगों को कहा। प्रभुपाद ने अपने गुरु भाइयों को भी डाक से आमंत्रण भेजा था, और जब उनमें से एक नवद्वीप के श्रीधर महाराज ने आमंत्रण स्वीकार किया, किसी ने उत्तर नहीं दिया, प्रभुपाद के पत्र का किसी ने उत्तर नहीं दिया। डाक के द्वारा प्रभुपाद ने पत्र भेजा था, लेकिन उनके गुरु भाइयों में से एक श्रीधर महाराज ने जो है आमंत्रण स्वीकार किया। कैसे? डाक से उन्होंने प्रभुपाद को उत्तर दिया। तो प्रभुपाद ने उत्तर में उन्हें सुविधाजनक आवास के लिए विश्वस्त किया कि आप आइए और आपके लिए पूरी सुविधा, रहने की पूरी व्यवस्था हम करेंगे। प्रभुपाद ने दूसरा पत्र फिर भेजा। उन दोनों फोन से बात करना संभव नहीं था, मोबाइल नहीं था, है ना, और ईमेल नहीं था। तो प्रभुपाद ने डाक के द्वारा फिर पत्र भेजा, और कलकत्ता से वृंदावन की यात्रा के लिए सबसे आसान रास्ता भी बताया। श्रीधर महाराज जो है कलकत्ता में है, तो कलकत्ता से वृंदावन कैसे आए आसानी से, प्रभुपाद ने पत्र में ये सब बातें लिखी। इसलिए प्रभुपाद ने श्रीधर महाराज को अपने प्रचार के बारे में भी लिखा। क्या लिखा सुनिए, प्रभुपाद का पत्र है, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी पुस्तकें खूब बिक रही हैं। तो प्रभुपाद सबसे पहले ये सूचना दे रहे हैं, हमारी पुस्तकें खूब बिक रही हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु महाराज हैं, उन्होंने प्रभुपाद को एक ही आदेश दिया था कि तुम्हें जब भी धन मिले तुम पुस्तकें छापो। और पुस्तकें छापो का मतलब है पुस्तकें फिर बेचना भी है। मंदिर बनाने के लिए प्रभुपाद ने आदेश नहीं दिया था, पुस्तकें छापने के लिए आदेश दिया था। तो प्रभुपाद जो है श्रीधर महाराज को पत्र में ये सूचना दे रहे हैं कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी पुस्तकें खूब बिक रही हैं। गत वर्ष हमने लगभग 40 लाख पुस्तकें बेची थीं, पिछले साल 40 लाख पुस्तकें बेची थीं, और इस वर्ष 6 महीने के अंदर ही हमने गत वर्ष का कोटा पूरा कर दिया है। इस साल 6 महीने में ही साल भर का, यानी कितनी 40 लाख किताबें हैं हमने 6 महीने में ही बेच दी हैं। इसलिए हम सहज ही आशा कर सकते हैं कि इस वर्ष हम गत वर्ष से दोगुनी बिक्री करेंगे। सीधी बात है, 6 महीने में 40 लाख तो और 6 महीने में 40 लाख, 6 महीने का मतलब जून का महीना समाप्त हो गया, तो जून जनवरी से जून तक 40 लाख पुस्तकें, तो जुलाई से दिसंबर तक 40 लाख पुस्तकें, 80 लाख पुस्तकें, तो पिछले साल से दोगुना हमारा जो है पुस्तक वितरण हो जाएगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कठिनाई केवल ये है कि हम फैलकर अब एक विश्व संस्था बन गए हैं। कठिनाई क्या है? हम फैल करके विश्व संस्था बन गए हैं, तो हर जगह प्रचार की आवश्यकता है, तो हम लोग अब सम्मिलित प्रयास नहीं कर सकते, तो ये कठिनाई है, फैल गए हैं। और कहीं भक्त हैं तो उनको दूसरे मंदिर में भेजा जाता है, इधर भी मंदिर खोलो, इधर मंदिर खोलो, इधर तो इसलिए सम्मिलित प्रयास नहीं हो पा रहा है, और इसको बनाए रखने के लिए बहुत कुशल प्रबंध की आवश्यकता है। कृष्ण की कृपा से सब ठीक चल रहा है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से ही ये हो सकता है कार्य। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मेरी अपनी शक्ति नहीं है, तो कृष्ण की कृपा से ही सब कार्य हो सकता है। क्या? कि पूरे विश्व में सही व्यवस्था हो और प्रचार हो और फैलता रहे आंदोलन। आगे, जहाँ तक प्रचार के लिए यात्रा का प्रश्न है, ये मेरे लिए अब कठिन हो गई, प्रचार के लिए आवश्यकता, क्योंकि मुझे भी वही दिल की बीमारी है जो आपको है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो आपको है वो मेरी, और प्रचार में जो है यात्रा के लिए बहुत खतरनाक, दिल की बीमारी बड़ी खतरनाक है यात्रा के लिए। फिर भी मैं केवल उन युवा लड़कों और लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलता फिरता रहता हूँ जो मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, मुझे फिर भी करना पड़ रहा है। प्रभुपाद कहते हैं अगर प्रभुपाद यात्रा ना करें तो ये आंदोलन चल नहीं पाएगा। तो हर मंदिर में प्रभुपाद को जाना होता है और निर्देशन देने होते हैं। तो ये प्रभुपाद का पत्र था किसके लिए, किसके लिए? श्रीधर महाराज के लिए। और श्रीधर महाराज कहाँ पर हैं? कलकत्ता में हैं। 15 जुलाई को वृंदावन पहुंचने की प्रस्तावित तिथि के केवल 10 दिन पहले उन्होंने लगभग 100 पत्र अपने सन्यासी शिष्यों को लिखे कि वे वृंदावन आए, जिससे उनकी अनेक व्यक्तिगत समस्याओं और कार्यक्रम के मसलों का समाधान निकाला जा सके जो प्रभुपाद के व्यस्त यात्रा कार्यक्रम के कारण लंबे समय से लटके पड़े थे। तो प्रभुपाद ने 10 दिन पहले सब सन्यासी शिष्यों को पत्र लिखे कि यात्रा में प्रभुपाद इतने व्यस्त हैं कि उनकी बहुत से जो समस्याएं हैं तो उनका हल नहीं हो पा रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि 15 जुलाई को आप लोग आएंगे तो ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी, कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन भी हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा किनको? अपने सन्यासी शिष्यों को। मैं आपको हार्दिक आमंत्रण भेजता हूँ कि आप वृंदावन में हमारे उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हों। शिष्यों को भी प्रभुपाद आदर दे रहे हैं, है ना, सन्यासी शिष्यों को आदर दे रहे हैं। ये विधि है, सन्यासी शिष्य को जो गुरु है अपने समान आदर देता है। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं आपको हार्दिक आमंत्रण भेजता हूँ, यानी आदेश नहीं दे रहा हूँ, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आमंत्रण भेजता हूँ कि आप वृंदावन में हमारे उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हों। उस समय वहाँ हमारे सभी सन्यासी उपस्थित होंगे, आप भी एक नियमित सन्यासी होने के नाते आएं और भाग लें, ये मेरी इच्छा है। जब करणधार जो हाल में ही भारत में जीबीसी का सचिव नियुक्त हुआ था इस बात में संदेह प्रकट करने लगा कि समय पर हर काम हो जाएगा या नहीं, तो प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस से उसे जवाब दिया। एक बहुत बड़ी ये क्या हो गई, दुर्घटना। जो भारत के जीबीसी सचिव हैं करणधार, तो उन्होंने पत्र में प्रभुपाद को क्या लिखा कि अभी डाउट, संदेह। क्या संदेह है? उस समय तक पूरा कार्य हो पाएगा कि नहीं। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया क्या, उत्सव बहुत शान से होना चाहिए, इसे सस्ता नहीं बनाना है, यदि धन की कमी हो तो उसकी व्यवस्था की जाएगी, प्रसाद सभी अतिथियों के लिए भरपूर होना चाहिए, आप ऐसी योजना बनाइए और मैं धन की व्यवस्था करूंगा, प्रसाद वितरण पूर्ण रूप से चलता रहना चाहिए, जहां तक समय पर मंदिर ना पूर्ण होने की बात है वो आपकी जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूं। प्रभुपाद ने उत्तर लिखा क्योंकि प्रभुपाद इस कार्यक्रम को स्थगित नहीं करना चाहते हैं, इसको विलंबित नहीं करना चाहते हैं प्रभुपाद इस कार्य को, इसलिए उन्होंने कला पत्र लिखा कि आपकी जिम्मेदारी है, होना चाहिए। कितने लोगों को आमंत्रण भेजा है उस निश्चित तारीख के लिए, कितनी तैयारियां, है ना, और कितने कितने लोगों को बताया जन्माष्टमी के दिन क्या होना है, कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन होना है। यद्यपि प्रभुपाद ने करणधर को जोरदार जवाब दे दिया था, वैसे करणधर ये नाम है कर्णधार, कर्णधार, कर्णधार इव आर्णवम, कर्णधार का मतलब है जो नौका को खेने वाला, खेवैया कर्णधार होता है, उसको करणधर वो बोलने में जो है करणधर ये नाम जो है चल गया उनका करणधर, क्योंकि अंग्रेजी में जो शब्द होते हैं तो उनमें बड़ा की मात्रा छोटा की मात्रा का कुछ पता नहीं चलता सही 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 क्या है, तो कर्णधार को करणधर करणधर बोलते हैं, कोई नहीं जानता इसका अर्थ क्या है, कर्णधार, गुरु कर्णधारम, ये मनुष्य का शरीर है नौका के समान है और गुरु इसका कर्णधार है, तो जो खेने वाले हैं मयानुकूल है नभस्वता, और भगवान जो है अनुकूल हवा बन करके नौका की सहायता करते हैं किनारे में लाने के लिए, तो कर्णधार है। तो कर्णधार को जोरदार जवाब दे दिया था प्रभुपाद ने, किंतु भारत में उनके प्रधान प्रबंधक की ओर से जो संदेहात्मक टिप्पणी उन्हें प्राप्त हुई थी उसने उन्हें विक्षिप्त कर दिया। प्रभुपाद अंदर ही अंदर बहुत विक्षिप्त हो गए, यानी डिस्टर्ब, अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो गए, है ना। उन्होंने सुरभि को लिखा जो वृंदावन में निर्माण के इंचार्ज थे, ये आर्किटेक्ट हैं सुरभि स्वामी, उनको पत्र लिखा, मैं मन में कुछ विक्षुब्ध हूँ क्योंकि करण धर का पत्र कहता है कि कुछ कार्य उत्सव के समय भी चलता रह सकता है। लॉस एंजलिस में प्रभुपाद को समाचार मिला, सब लोग सुन रहे ध्यान से, अभी प्रभुपाद लॉस एंजलिस में, नहीं लॉस एंजलिस में प्रभुपाद नहीं है, लेकिन लॉस एंजलिस में प्रभुपाद को समाचार मिला, क्षमा करना, प्रभुपाद लॉस एंजलिस में है और प्रभुपाद को समाचार मिला कि लंदन की रथ यात्रा जो उस महीने के अंत में होने वाली थी स्थानीय अधिकारियों द्वारा रद्द कर दी गई थी। अधिकारियों का कहना था कि गत वर्ष के जुलूस से यातायात बहुत बाधित हुआ था। प्रभुपाद ने आग्रह किया कि भक्तों को इस अनुचित आदेश का प्रतिरोध करना चाहिए। पुलिस के स्थानीय अधिकारियों ने रद्द कर दी रथ यात्रा, किस बात पर रद्द कर दी कि पिछले साल क्या हुआ था, यातायात में कठिनाई हुई थी। तो प्रभुपाद ने आग्रह किया कि भक्तों को इस अनुचित आदेश का प्रतिरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा यह धार्मिक भेदभाव है, वास्तव में असली कारण ये नहीं है, असली कारण क्या है कि वो ईसाई हैं, वहाँ की जो सरकार है वो ईसाई है, है ना, तो उनको जो है पक्षपात, उनके अंदर पक्षपात की भावना है कि भाई ये हरे कृष्ण का जो आंदोलन है वो क्यों इतना फैलेगा, हमारा ईसाई धर्म इतना नहीं फैल रहा है तो ये लोग क्यों फैला रहे हैं, तो ये प्रभुपाद ने कहा धार्मिक पक्षपात है ये कारण इसका। और उन्होंने परामर्श दिया कि लंदन में रहने वाले सहानुभूतिपूर्ण भारतीयों को अपने राजदूत से मिलना चाहिए और मामले को महारानी के सम्मुख प्रस्तुत करने का अनुरोध करना चाहिए। मेलबोर्न के रेवरेंड पाविल द्वारा हाल ही में दिए गए वक्तव्य का उपयोग ये दिखाने के लिए किया जा सकता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन से ईसाइयों को संकेत होने की आवश्यकता नहीं। ये मेलबोर्न में जो रेवरेंड पाविल हैं तो कोई बड़े सम्मानित व्यक्ति होंगे, तो उनका जो प्रवचन हुआ था तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ईसाइयों को डरने की आवश्यकता नहीं है, हरे कृष्ण आंदोलन अगर फैलेगा तो ईसाइयों के लिए कोई बाधा नहीं है, इसमें किसी प्रकार का ईसाई धर्म से विरोध नहीं है हरे कृष्ण आंदोलन का, तो ये बात जो है महारानी के सामने पेश किया जाए। आगे प्रभुपाद ने प्रतिरोध प्रकट किया, पुलिस की आपत्ति का ये तात्पर्य है कि पूरे धार्मिक समारोह पर रोक लगा दी जाए, ये क्या है, केवल कुछ तकनीकी गलती के कारण वे हमारे पूरे धार्मिक समारोह को रोक देंगे, गलती उनकी ही है, कुछ उनकी ही जो है गलती से और लापरवाही से ये यातायात ज़्यादा देर तक रुका रहा, तो हमारे कारण ये कोई बाधा नहीं थी, ये कारण उनकी ही कुछ असावधानी थी। प्रभुपाद ने कहा यदि नगर के अधिकारी जुलूस पर प्रतिबंध जारी रखते हैं तो भक्तों को चाहिए कि हाइड पार्क में एक अचल रथ निर्मित करें। प्रभुपाद ने क्या बताया कि रथ आगे नहीं बढ़ेगा, पार्क में रथ खड़ा रहेगा, हाइड पार्क में रथ खड़ा रहेगा और जुलूस निकाले बिना ही वहाँ उत्सव मनाएं, रथ के चारों तरफ कीर्तन करेंगे भक्त लोग, उस पार्क में ही कीर्तन करेंगे। प्रभुपाद ने कहा उत्सव के बाद हम श्री विग्रह को एक पालकी में ट्रेफलगर स्क्वायर ले जाएंगे, वो रथ यात्रा का जो रूट है उससे हम अर्चक विग्रहों को एक पालकी में ले जाएंगे, तो इसमें पुलिस की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ले जाएंगे, रथ अपनी जगह पर रहेगा ये नहीं चलेगा, किंतु हम श्री विग्रहों को पालकी में बैठाएंगे और ट्रेफलगर स्क्वायर ले जाएंगे, पुलिस कमिश्नर की अनुमति इसके लिए प्राप्त करो। अच्छा हाँ, इसमें और उत्सव के साथ साथ वहाँ पहुँचने के बाद हम प्रतिरोध करेंगे, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु रस दिखाई अवश्य पड़ना चाहिए और जनता को मालूम होना चाहिए कि दुष्ट पुलिस ने जुलूस रोक दिया है। प्रभुपाद की कितनी दूरदृष्टि है, रथ काफ़ी बड़ा हो और वहाँ से जो है सब लोग रथ को देखें, और लोगों को पता होना चाहिए कि पुलिस ने किस प्रकार का भेदभाव किया है, पक्षपात किया है, और हमारे रथ को लाने की अनुमति नहीं दी। जनता को मालूम होना चाहिए, है ना। आगे प्रभुपाद ने अपने आदेश को कई बार दोहराया। क्यों? बहुत महत्वपूर्ण बात होती है तो कई बार दोहरानी पड़ती है, है? या बहुत मंद बुद्धि के लोग हैं, कलयुग में मंदास मंद मतियो, बहुत मंद हैं, आलसी हैं, और दिमाग उससे भी ज्यादा मंद है, सुमंद मति। तो इसलिए प्रभुपाद को बार बार दोहराना पड़ता है। प्रभुपाद ने अपने आदेश को कई बार दोहराया। अपने अनुयायियों को आदेश देते समय उनका मन बहुत उदास था। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, प्राण आछे यार से हेतु प्रचार, जिसमें प्राण है वो प्रचार कर सकता है, मृत व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। तो पिछले साल की रथ यात्रा में जनता ने बहुत हर्ष का अनुभव किया था, कीर्तन के द्वारा और रथ यात्रा के द्वारा जनता बहुत खुश हुई थी। लेकिन ये तो जो स्थानीय अधिकारी हैं तो वे केवल ईर्ष्या के कारण ही रथ यात्रा को रोक रहे हैं। तो जनता को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं, जनता को बिना बताए पता चले कि हम चाहते हैं, लेकिन हमें परमिशन अधिकारियों के द्वारा नहीं प्राप्त हुई। इसलिए तुम प्राणवान बनो, मृत व्यक्ति के तरह मत बनो, मरे हुए व्यक्ति की तरह मत बनो कि भाई स्थानीय अधिकारियों से परमिशन नहीं मिली है तो बैठ जाओ, बंद करो रथ यात्रा ही, बंद कर दो, नहीं, और ज़्यादा प्रयास करो, विरोध करने का प्रयास करो, और इस तरह का विरोध करो जिसमें अपनी सुरक्षा भी रहे। हिंसात्मक विरोध नहीं करना है, अहिंसात्मक विरोध करना है। हमें दिखाना है कि हम जो कार्य करना चाहते हैं इसमें बाधा किसकी ओर से हो रही है, और उनकी बाधा का कारण क्या है, उनकी ही पक्षपात की भावना है। आगे इसलिए तुम प्राणवान बनो, मृत व्यक्ति की तरह मत बनो, मेरे सभी गुरु भाइयों की तरह नहीं, वे मृत व्यक्ति हैं। मेरे सभी गुरु भाई कैसे हैं? मृत व्यक्ति हैं, मृत व्यक्ति हैं। जहाँ जहाँ गौरी मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने खुले तो वहीं वैसे खुले पड़े हैं, अपना वहीं पर ही अपना कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, और कुछ प्रचार नहीं, ना पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, किताबों की छपाई भी बंद कर दी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 3 प्रेस जो है अपनी खोली थी किताबों की छपाई के लिए, अपनी प्रेस खोली थी, है ना। तो उनमें भी किताबों की छपाई नहीं हो रही, सब जो है बंद पड़ा है काम। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे गुरु भाई मृत व्यक्ति हैं, इसलिए वे मेरे कार्यों से ईर्ष्या करते हैं, उनमें जीवन नहीं है। यदि तुम लोग आराम की जिंदगी चाहते हो, श्री विग्रह का दर्शन कराकर सोना चाहते हो, तो इस आंदोलन को विफल समझो। क्या करना चाहते हो कि लोग आएंगे श्री विग्रह के दर्शन करेंगे और जाएंगे, और थोड़ा चरणा में मिल जाएगा उनको, अगर यही चाहते हो तो आंदोलन क्या है, विफल है। क्योंकि ऐसे तो मंदिर बहुत से बने हुए हैं भारत में, जाओ दर्शन करो चरणामृत पाओ और छुट्टी, है ना। तो प्रभुपाद कहें आंदोलन फिर सफल नहीं, अगर इतने ही करना चाहते हो कि श्री विग्रह का दर्शन करा करके सोना चाहते हो, कि तुमने दर्शन करा दिए श्री विग्रह का, अब सो जाओ। प्रभुपाद को ये सुनना सहन नहीं था कि उनका रथ यात्रा जैसा महत्वपूर्ण उत्सव रोका जा रहा है, कि जनता जो है चाहे, जनता को जो है बहुत खुशी हो रही है, जनता इस आंदोलन का स्वागत कर रही है, ये स्थानीय अधिकारी पक्षपात के कारण बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा हम सभी नियमों का पालन करेंगे, लेकिन हमें ये उत्सव अवश्य करना है। सभी नियमों का मतलब अगर उन्होंने रोका हुआ है तो हम रथ यात्रा नहीं निकालेंगे, लेकिन तो भी हमें क्या करना है, उत्सव जरूर मनाना है, उत्सव जरूर मनाना। कैसे मनाना है? रथ को खड़ा कर देंगे, तो चारों तरफ कीर्तन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, कीर्तन करेंगे, और फिर जो उत्सव विग्रह हैं उनको लेके जाएंगे ट्रैफिकल स्क्वायर पार्क में, जो जो रथ यात्रा का जो रूट है उसमें तो कीर्तन करना ही है, जाएंगे। गत वर्ष उन्होंने देखा था कि सैकड़ों हजारों लोग ट्रैफिकल स्क्वायर में कड़ी धूप में 3 घंटे तक खड़े रहे। इतना मतलब सफल हुआ रथ यात्रा का उत्सव, इतना सफल हुआ कि कड़ी धूप में 3 घंटे तक लोग खड़े रहे, क्योंकि इतना इसका आकर्षण था कीर्तन का। और वे चर्च नहीं जाते हैं तो उनको जो है बुरा लगता है कि भाई हमारे चर्च में तो ये लोग आते नहीं हैं, और इनके हरे कृष्ण वालों के जो है उस समय कड़ी धूप में 3 घंटे तक खड़े हैं तो ये ठीक नहीं है, इसलिए बहाना बनाया कि भाई यातायात बंद हो रहा है, नहीं परमिशन नहीं मिलेगी। अतः उन्होंने देखा है कि हमारे आंदोलन में कुछ विशेषता है, अन्यथा लोगों ने इतनी रुचि क्यों प्रदर्शित की है। तो ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, हाँ ठीक जैसे सैन फ्रांसिस्को पत्र में छपा है, उन्होंने स्वीकार किया ये सबसे अधिक लोकप्रिय उत्सव है, क्योंकि रथ यात्रा का जो उत्सव जहां जहां भी हुआ तो पुलिस अधिकारियों ने एक बात ये देखी, विशेष बात ये देखी कि इतनी भीड़ में जब युवक लोग चलते हैं तो तोड़फोड़ जरूर करते हैं, लेकिन रथ यात्रा के उत्सव में कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। तो पहली बार उनको अनुभव हुआ कि इतनी भीड़ में इतने युवक लोग चलें और कोई तोड़फोड़ ना हो, तो बहुत मतलब आश्चर्य हुआ पुलिस वालों को। प्रभुपाद कहते हैं, हाँ सैन फ्रांसिस्को में 15,000 लोगों ने शांत भाव से मेरा भाषण सुना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सब लोग सुन रहे हैं, है ना, नहीं तो हो हल्ला करते बहुत ज्यादा, है शांत भाव से मेरा भाषण सुना। अतः वे देख रहे हैं कि हमारे आंदोलन में कुछ चीज है, किंतु कभी कभी कुछ पार्टियां नहीं चाहती कि हम बिना आपत्ति के आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि इससे उनका खात्मा हो जाएगा, उनको ये डर है, जबकि उनका खात्मा नहीं होने वाला है, हमारा कोई विरोध नहीं उनसे, लेकिन उनको ये डर है कि भाई हमारा खात्मा हो जाएगा या हमसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, हमारे चर्च में कोई नहीं आ रहा है, है तो इनके रथ में रथ यात्रा में क्यों इतने लोग जा रहे हैं। तो यहीं पर ही हम विश्राम करेंगे और आज का जो विशेष दिन है उसकी चर्चा करेंगे। युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं और भगवान कृष्ण एक एक एकादशी का महात्म बता रहे हैं और क्रम से। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, श्री कृष्ण मैंने विजया एकादशी का महात्म सुन लिया, अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म बताने की कृपा करें। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है ना, तो क्रम से युधिष्ठिर महाराज एक एक एकादशी के बारे में पूछ रहे हैं कि नाम क्या है और उसका महात्म क्या है। तो श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन सुनो, तुम इस समय वो प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। वशिष्ठ मुनि सूर्यवंश के कुलगुरु हैं और मानधाता भगवान राम से बहुत पहले हुए, कई पीढ़ियाँ पहले राजा मानधाता हुए। तो मानधाता ने वशिष्ठ से पूछा था, वशिष्ठ मुनि से पूछा था और वशिष्ठ मुनि ने सुनाया इस एकादशी के महात्म्य। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है, इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है, इसका जो व्रत है ये विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है आमलकी, है ना। तो आज के दिन आमलकी वृक्ष उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, तो बहुत ही ये पवित्र घटना है जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, या जानते हो तो जितने बार सुने उतना ही इसका फल है। तो आज के दिन आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, बड़ी हर्षवर्धक घटना है। मानधाता ने पूछा, किससे पूछा मानधाता ने, वशिष्ठ मुनि से पूछा कि दुःश्रेष्ठ ये आमल की कब उत्पन्न हुई मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। तो भगवान के मुख का जो जल है ना, तो वो जो है चंद्रमा के समान एक बिंदु भगवान के मुख से निकला है। और देखिए ये विशेष बात है कि आंवला जो है आप मुंह में रखते हैं तो पानी निकलता है ना मुंह से, क्यों? क्योंकि भगवान के मुख के पानी से पैदा हुआ, तो आपके मुख में भी पानी पैदा करता है आंवला, है ना। तो भगवान के मुख से जो है जो चंद्रमा के समान बिंदु निकला, चंद्रमा के समान चमकीला बिंदु निकला, उससे वृक्ष उत्पन्न हुआ। वो बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसी से आमल की यानी आमले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। ये सभी वृक्षों का आदि वृक्ष कहलाता है, गोविंदम आदि पुरुषम है। तो आमले का जो वृक्ष है ये वृक्षों का आदि वृक्ष है, आदि वृक्ष कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो ये घटना भी उसी समय हुई, ये वृक्ष पैदा हुआ भगवान के मुख से और ब्रह्मा जी पैदा हुए भगवान की नाभि से है। उसी उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई, देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस नाग और निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमल की का वृक्ष था। हमारे मुंह का जो थूक है वो तो अशुद्ध है, भगवान के मुख का थूक अशुद्ध थोड़ी है, वो बहुत पवित्र है। पवित्रम परमम भवान है, तो भगवान सिक्के जो है थूक से उत्पन्न हुआ। तो उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे को देखते हुए उस वृक्ष की ओर देखने लगे, एक दूसरे देखते हैं फिर वृक्ष को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं फिर वृक्ष को देखते हैं, और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं। हर कल्प में जितने प्रकार के वृक्ष होते हैं वो सब जानते हैं, कितने प्रकार के वृक्ष हैं, 84 लाख योनियों में से स्थावरा लक्ष्य विंशति, 20 लाख प्रकार की स्थावर योनियाँ हैं, तो वो उनको तो सब जानते हैं 20 लाख प्रकार के वृक्ष, तो ये उनमें से अलग कैसे हो गया? पिछले कल्प की में जो वृक्ष थे उनसे अलग है, इस समय जो है ये वृक्ष कैसे उत्पन्न हो गया? तो सब उस वृक्ष को देखते हैं, फिर एक दूसरे का मुँह देखते हैं कि भाई तुमको कुछ पता है क्या है? तो एक दूसरे का मुँह देखते हैं, तुमको पता है, तुमको पता है, तो सब एक दूसरे का मुँह देखते हैं, फिर वृक्ष की तरफ देखते हैं। बड़ा विस्मय हुआ, वे एक दूसरे को देखते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं। 20 लाख प्रकार के वृक्षों को जानते हैं पहले से, उनकी लिस्ट में सब नाम है, उनका चित्र बना है, सब बना है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते, इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई। क्या हुई? आकाशवाणी। आकाशवाणी में जो बोलता है वो नहीं दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ती है आकाशवाणी, लेकिन बोलने वाला नहीं दिखाई पड़ता है। आकाशवाणी हुई, महर्षियों ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है, हरि बोल। इसके स्मरण मात्र से, इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। क्या समझे? स्मरण मात्र से ही गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना यानी दो गाय दान का फल मिलता है, और फल भक्षण करने से 3 गुना। अगर फल खाया तो 3 गुना, मतलब 3 गाय दान करने का फल। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है, ये वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु निवास करते हैं, मूल मतलब जड़ में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा और स्कंद में परमेश्वर रुद्र, ये शाखा में ब्रह्मा जी हैं और तने में रुद्र हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, और अन्य शाखाओं में मुनि हैं, टहनियों में देवता हैं, पत्तों में वसु हैं, फूलों में मरुदगण हैं और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं, आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। तस्या मूले स्थित भूषण विष्णु तदूर्धम चा पितामह स्कंधे चा भगवान रुद्रासन स्थित परमेश्वर शाखासु मुनि सर्वे प्रशाखासु च देवता पर्णेषु वसवो देवा पुष्पेषु मरुतस्तथा प्रजानां पतयः सर्वे फलेषु एव व्यवस्थिता सर्वदेवमयी हेषा धात्री च कथिता मया। इसको धात्री भी कहते हैं, आंवले के वृक्ष को धात्री, धात्री फल, आंवले के फल को धात्री फल भी बोलते हैं। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूज्य है। क्या आंवले का? ऋषि बोले, हे महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? आप बोल रहे हैं लेकिन हमें आप सामने नहीं आ रहे हैं। आप कौन हैं? हम आपको क्या समझें? हे महापुरुष, हम आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कुछ और? हमें ठीक ठीक बताइए। कौन बोले? ऋषि और देवता बोले। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण प्राणियों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूं। क्या उत्तर मिला? दर्शन नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं मिलेगा। जो संपूर्ण प्राणियों के कर्ता, समस्त भुवनों के सृष्टा, विद्वान पुरुष कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे, उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और परमात्मा को नमस्कार है, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है, अंत रहित परमेश्वर को बारम्बार प्रणाम है, दामोदर कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है, मायापते आपको प्रणाम है, आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। तो इस तरह से फिर आगे इस व्रत की विधि का भी भगवान वर्णन करते हैं ऋषियों से। तो वो व्रत की विधि मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि वो संभव नहीं है, हम तो सरलता से जो प्रभुपाद ने बताया है उतना ही करते हैं कि अन्न नहीं खाना है, है ना। और आंवले का फल है अगर आप ले सकते हैं, या आंवले की बनी हुई कोई चीज़ अगर आप लेना चाहें तो विशेष एकादशी के दिन आंवला का जो है भोजन, या आंवला से बना हुआ कुछ भी, चटनी है, मुरब्बा है, हलवा है, कुछ भी आप ले सकते हैं, तो ये बहुत शुभ है, बहुत पवित्र है। अब एक और घटना आंवले के वृक्ष के महात्म्य की मैं सुना रहा हूँ। ये भी पद्म पुराण से था और ये भी पद्म पुराण से है। कार्तिकेय जी शिव जी से प्रश्न कर रहे हैं। कौन प्रश्न कर रहे हैं? कार्तिकेय जी प्रश्न कर रहे हैं। किससे? शिव जी से प्रश्न कर रहे हैं। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे पिता, मैं अन्य अन्य फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ, सब लोगों के हित के लिए बताइए कौन कौन से फल उत्तम हैं। तो शिव जी बोले, बेटा, अपने पुत्र से बोल रहे हैं, बेटा, आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। इस बात से हमें आंवले का वृक्ष यहाँ भी लगाना चाहिए है? तो मेरा सुझाव है, अगर नहीं लगाया है तो लगाइए। लगाए तो दर्शन करना चाहिए उसका, हम लोगों को दर्शन करना चाहिए। इसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला और शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, खाने मात्र से। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है, और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है, और सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है, वहां दैत्य और राक्षस नहीं जाते। कौन नहीं जाते? दैत्य और राक्षस नहीं जाते, जिस घर में आंवला हमेशा रहता है। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए, क्या समझे? एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी, पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं। हरि बोल। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। हे सदानंद, सदानंद किसको कहते हैं? कार्तिकेय, छह मुख वाले हैं ना। सदानंद जो आंवले के रस से सदा अपने केसों को साफ करता है, आंवले के रस से अपने बालों को साफ करता है, वो पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता। मतलब जन्म मरण से छूट जाएगा। आंवले का दर्शन, स्पर्श और उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होते हैं भगवान। आंवले को देखने से भी कभी कभी आंवले के माला भी भगवान को पहनाई जाती है ना, तो आंवले का दर्शन और आंवले का स्पर्श और आंवले के नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। हरि बोल। अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहां भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं और उस घर में ब्रह्मा और सुस्थिर लक्ष्मी का वास होता है। सुस्थिर लक्ष्मी मतलब चंचल लक्ष्मी नहीं है। चंचल लक्ष्मी तो हर जगह चंचल है, चली जाती है, लेकिन वहां पर लक्ष्मी सुस्थिर रहेगी। भगवान विष्णु है तो लक्ष्मी तो स्थिर रहेगी और ब्रह्मा जी भी निवास करते हैं, इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा और बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। इस नोट करने वाली बात है ना। उतना संतुष्ट होने सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता है। आंवले का मुरब्बा अगर आपने भोग लगाया है, और भी बहुत से कीमती चीज़ें बनाई जाती हैं आंवले से, तो वो अगर आप भोग लगाते हैं, आंवले के कई आइटम होते हैं, बना सकते हैं। हे स्कंद, कार्तिकेय का एक नाम स्कंद, हे स्कंद, योगी मुनियों और ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को भी मिलती है। तीर्थों में वास और तीर्थ यात्रा करने से और नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले के फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। हरि बोल। प्रत्येक रविवार और विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए, कोशिश निषेध है। संक्रांति के दिन शुक्रवार को और षष्ठी प्रतिपदा नवमी अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग करना उचित है। अब ये भी कुछ निषेध है, अब ये मैं नहीं जानता क्यों है, लेकिन है। जिस मृतक के मुख में आंवले का फल हो, मरते समय किसी मुख में अगर आंवले का फल हो या नाक में पड़ जाए, कान में पड़ जाए या बालों में आंवले का फल पड़ जाए तो विष्णु लोक को जाता है। हरि बोल। हरि बोल। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं और कठोर और दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। स्कंद, पूर्व काल की बात है, एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। आज के दिन आंवले का वृक्ष पैदा हुआ है, तो आज जो है विशेष पवित्र दिन है ये, तो हम लोग आंवले के महात्म्य की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व काल की बात है, एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वह अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब भूख प्यास से बहुत पीड़ित हो गया तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे हुए थे। चांडाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। लेकिन आंवले की जो डाल है वो बड़ी कच्ची होती है ना, और हुआ भी यही है, उसको पता नहीं था कि डाल बहुत कच्ची होती है। प्रारब्ध बस वो वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा। तब संपूर्ण प्रेत राक्षस भूतगण और यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए, किस लिए? नरक में ले जाने के लिए। बड़ी प्रसन्नता से आए किंतु उसे ले ना जा सके। यद्यपि वे महान बलवान थे तथापि उस मृतक चांडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़कर ले जा ना सका, एक बड़ी समस्या हो गई। इतने झुंड के झुंड जो है चांडाल और जो है यमदूत हैं, पकड़कर ले ना जा सका। तब वे अपनी असमर्थता देखकर मुनियों के पास जाकर बोले, ज्ञानी महर्षियों, चांडाल तो बड़ा पापी है, फिर क्या कारण है कि हम लोग और यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी नहीं पा रहे हैं? क्या चक्कर है यहाँ? इस पापी को हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं, जैसे कि बहुत तेजस्वी व्यक्ति हो, मतलब आँख हमारी जो है चकाचौंध हो रही है, छूने की तो बात बहुत दूर है, देख भी नहीं पाते हैं, क्या बात है? ये तो बहुत पापी है, ये मेरा है, ये मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते। कहते मैं इसको ले जाऊंगा, तो उसे कहते मैं इसको ले जाऊंगा, तू क्यों ले जाएगा? मैं ले जाऊंगा, मैं ज्यादा मारूंगा उसको। कहते मैं तुझसे ज्यादा मारूंगा इसको, है ना? क्यों और किसके प्रभाव से वो सूर्य की भांति दुष्प्रेक्ष हो गया है? दुष्प्रेक्ष मतलब देख नहीं सकते, सूर्य को आप नहीं देख सकते ना, उसकी ओर देखना भी कठिन जान पड़ता है। मुनियों ने कहा, प्रेतो, इस चांडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे, समझे? क्या समझे? हाँ, आंवला के पके फल खाए थे, उसकी डाल टूट जाने से, डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े, अब तुम कैसे जाओगे? जब गिरा तो बहुत से आंवले के फल भी तो गिर गए, उसके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या किसी निषिद्ध बेला में नहीं हुआ है, अगर संडे को होता तो फिर फायदा नहीं होता, तो रविवार को नहीं है, आज रविवार का दिन तो नहीं है। तो प्रेत बोले, मुनीश्वरो, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ विष्णु लोक से विमान नहीं आता है तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें। अब प्रश्न खैर अलग प्रकार का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि विष्णु लोक से विमान आएगा और ये जाएगा विष्णु लोक में, तो ये मतलब निश्चित है, तो नरक में नहीं जाएगा, जबकि उसको जाना नरक में, विष्णु लोक तो बहुत दूर की बात है, उसको नरक में जाना है, लेकिन यमदूत कहते हैं कि नरक में तो नहीं जा सकता है, और जब तक विमान नहीं आता है तब तक हम यहाँ खड़े रह सकते हैं, विमान आएगा तो हम यहाँ फिर नहीं खड़े हो पाएंगे, जब विष्णु से विमान आएगा तो हमारा खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी जब तक विमान नहीं आता तब तक हम खड़े होके आपसे कुछ बात पूछ लेते हैं, तो आप बता दीजिए, तो ये बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आंवले के संबंध में, आज विशेष दिन है, आमल की वृद्धि एकादशी का है, तो अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है, क्योंकि प्रसाद दोपहर में होगा, तो 15 मिनट के समय में हम लोग आप लोगों के साथ कुछ चर्चा कर सकते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। हाँ जी, किसका प्रश्न? हाँ जी बोलिए, हेड माइक चाहिए? ये चालू कर दिया मैंने, ले जाओ दे।
कौन सा ग्रंथ से है?
पद्म पुराण।
जो भी बड़े पद्म पुराण जो पढ़े भाव उठाए और आत्मा हमला के बारे में जितने भी बोले हैं, तो एकादशी में इस चर्चा को करते रहे तो ज्यादा अच्छा है, जो लोग भूल जाते हैं बार बार, छोटे छोटे चीज है, ये खाने चाहिए, ये काम जो करना है, और ये बहुत चीज़ जो फायदा है तो आप ये अपनी तरफ से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जैसे कि मुझे मौका मिले तो इस विषय को जो मीटिंग करने के लिए
धन्यवाद। हरि बोल। और आप लोगों की ओर से? हाँ जी, कौन से युग में प्रकट हुआ था? अब ये किसी कल्प में प्रकट हुआ था, ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए थे तो आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो आप समझ लीजिए सबसे पहला कल्प ब्रह्मा जी के जीवन का, तो आप पहले फिर बाद में। जी हाँ, आप बोलिए।
जैसे आपने आंवले का जो लेना और पानी में मिलाना कई प्रकार के मतलब उसके स्पर्श से स्मरण से लाभ बताए, तो आपने जो भी अभी तक बताया वो सब स्पिरिचुअल महत्व ही उसका मुख्य है, मतलब उद्देश्य उसका आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है आंवले का प्रचार जो है ये मेडिसिन के रूप में और मतलब जैसे योग संस्था वाले मतलब शरीर की रक्षा के लिए करते हैं, लेकिन उनमें फिर क्या चेतना में कुछ बदलाव आता है या कभी?
हाँ, इनका प्रश्न है कि आंवला से तो बहुत सी औषधियाँ बनती हैं, बहुत सी दवाइयाँ बनती हैं। हाँ, विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा है आंवले में, तो इसका तो बहुत गुण है और बहुत प्रकार के रोगों को दूर करता है, तो इससे क्या चेतना में फर्क आता है? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब वो चांडाल है वो भी कुछ नहीं जानता आंवले का महत्व, वो तो खाने के लिए पेड़ में चढ़ा था, उसे क्या पता कि आंवला से उसकी कितनी बड़ी रक्षा होने वाली है, है? तो वो जब है कर रहा है, लेकिन बस यही है कि जो निषिद्ध जो दिन होते हैं तो उस दिन जो है त्याग करना चाहिए आंवले का, लेकिन हमेशा स्नान केशों को धोना आंवले के जल से, तो ये बहुत इसमें रक्षा होती है, बहुत इसका फल है, तो ये भी है। तो इस पर और ज़्यादा विचार किया जा सकता है इस विषय पर, लेकिन अनजाने में भी कोई व्यक्ति अगर इसका सेवन कर रहा है और अगर वो समय अगर उचित है तो उसका फल निश्चित है कि वो मिलेगा। और आपका प्रश्न है किसने? आपने? हाँ हाँ, हाँ ऐसा लिखा है। अब ये संक्षिप्त पद्म पुराण है, हमारे पास में वो पूरा पद्म पुराण नहीं है, तो जिसमें हमें कुछ ज़्यादा इसकी विवरण मिल सकता है, ये संक्षिप्त है, तो इसलिए हम ज़्यादा इस विषय में अभी जान नहीं सकते हैं इस बात को, लेकिन जो असली पद्म पुराण होगा तो उसमें देखा जा सकता है, तो उसमें ज़्यादा विस्तार से सब बातें लिखी होंगी, ठीक है। आपका प्रश्न? चैप्टर ये चैप्टर जो है भूमिखंड है, भूमिखंड में, ठीक है, पद्म पुराण में। और कोई? हाँ जी, हाँ ये पहले से चले आ रहे हैं, ये जो दिन है सप्तवार ये पहले से चले आ रहे हैं हमारे, ये सूर्य के नाम से ये रविवार है, ठीक है ना, चंद्रमा के नाम से सोमवार है, मंगल ग्रह के नाम से मंगलवार है, तो सात ग्रह हैं तो उनके नाम से सात ये वार हैं, ठीक है। और कोई? हाँ प्रभु, पीछे आंवले के सेवन का निषेध, हाँ निषेध बताया गया है, लेकिन उसका पूरा जो वर्णन है वो हमको भी नहीं मिला, क्योंकि संक्षिप्त पद्म पुराण है। विशेष दिन जैसे संडे रविवार को कहा गया कि है अमावस्या को, तो ऐसे कुछ दिन हैं बताए गए हैं। ये एकादशी को निश्चित रूप से, चाहे इतवार भी हो, अगर इतवार भी इतवार को भी अगर एकादशी पड़े तो एकादशी को तो विशेष इसका जो है दर्शन करना है, खाना है, तो ये बताया गया, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? प्रभुपाद के संबंध में मैं प्रश्न करूं आप लोगों से, तो ये कृष्ण बलराम मंदिर जो वृंदावन में उद्घाटन होना है, तो प्रभुपाद की बहुत चिंता है, तो प्रभुपाद ने अपने सन्यासी शिष्यों को पत्र लिखे, और वृंदावन में जो गुरुदास थे उन्होंने कहाँ कहाँ आमंत्रण पत्र भेजे थे कौन बताएगा? वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन के लिए है, बंबई कलकत्ता के आजीवन सदस्यों को व्यक्तिगत पत्र भेजे, और इस कौन के सभी सेंटरों को पत्र भेजे। हाँ हाँ, कारण यही था कि कर्णधार ने कहा कि हमें संदेह है, और वास्तव में वो बात सच निकली कि मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ है, जबकि मंदिर का निर्माण पहले से हो जाना चाहिए। हाँ तब तो उद्घाटन होगा, तो मंदिर का निर्माण ही अभी अधूरा है। हाँ हाँ, तो ये सब इसमें मतलब ये आएगा सब वर्णन की, फिर क्या हुआ कैसे हुआ, तो फिर दोबारा सूचित किया होगा, दोबारा सूचना दी होगी सबको, या जो भी हो बहुत लोग आ गए होंगे तो प्रभुपाद ने फिर कार्यक्रम को दूसरा कार्यक्रम कर लिया होगा, जो भी हो। तो प्रभुपाद के पास बहुत से उपाय हैं जिससे कि निराशा नहीं होती, तो प्रभुपाद निराश नहीं करते। जो लोग आए होंगे तो उनके साथ में प्रभुपाद ने कुछ कार्यक्रम तो किया होगा ना, है ना। और कोई? हाँ जी, हाँ हाँ, ये बहुत विशेष बात है। मतलब प्रभुपाद ने बड़ी कठोरता से निंदा की इस बात की कि अगर पुलिस से परमिशन नहीं मिलनी रथ यात्रा की तो आप जो है सो जाओगे, क्या सोते रहोगे, कुछ करना है और विरोध भी करना है, तो किस प्रकार विरोध करना है? उनके नियमों को नहीं तोड़ेंगे हम, लेकिन फिर भी हम अपना विरोध प्रकट करेंगे और जनता को जताएंगे कि हमारी ओर से ये कमी नहीं है, और अधिकारियों के पक्षपात के कारण हमारी रथ यात्रा का कार्यक्रम रोका गया है। इसके लिए प्रभुपाद ने क्या कहा कि क्या करना है, रथ बनाना है। हाँ रथ बनेगा, रथ बनेगा। अब सड़कों में अगर रथ को चलने की अनुमति नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, रथ को पार्क में खड़ा करेंगे और वहाँ हम लोग उत्सव मनाएंगे, उसके बाद फिर अर्चा विग्रहों को ले जाएंगे उसी रूट में, और वो जहाँ पर रथ यात्रा समाप्त होनी है वहाँ पर उत्सव मनाएंगे, और जनता को ये पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि किसकी ओर से बाधा पड़ी है रथ यात्रा। तो प्रभुपाद ने और भी कहा कि महारानी से भी बात करो और किसी सम्मानित व्यक्ति का वक्तव्य भी बताओ कि ईसाइयों को इससे कोई खतरा नहीं है, इस हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा ईसाइयों को कोई खतरा नहीं है। बोलो क्यों इसमें बाधा डाल रहे हैं? और विशेष कारण यह है कि वो रोक रहे हैं रथ यात्रा को, इसका विशेष कारण क्या है कि पिछले साल रथ जहां समाप्त हुआ था 3 घंटे कड़ी धूप में भी लोग खड़े रहे, जबकि चर्च में कोई नहीं जाता, उन्होंने बड़े बड़े चर्च बनाए हैं और कितनी संख्या में लोग वहां खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, इतने बड़े बड़े हॉल हैं, लेकिन वहां कोई नहीं जाता, और यहाँ धूप में खड़े हैं लोग, कड़ी धूप में खड़े हैं 3 घंटे तक खड़े रहे। तो लोगों को जो है इतना लोकप्रिय है ये रथ यात्रा का उत्सव, और फिर प्रभुपाद ने कहा हजारों की संख्या में लोगों ने मेरा प्रवचन भी सुना, मेरा भाषण भी सुना, और किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की, किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली, प्रवचन में आवाज़ नहीं निकाली किसी ने, प्रवचन सुनते रहे लोग, तो ये सफलता। हाँ जी, हरि बोल हरि बोल।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
ठीक बोलो बोलो,
बंद कर दिया। हरे कृष्णा,
थोड़ी देर में आएगा।
हरे कृष्णा, तो आप सभी भक्तों के लिए एक परम आवश्यक सूचना है, मंगल में सूचना है कि जैसा कि बता आज प्रभु जी का जन्म दिवस है, भी बहुत पवित्र है वैसे भी कि आमन की एकादशी व्रत जो कि आमन आज महात्म्य भी सुनाए तो हम सोच सकते हैं कि इस दिन प्रभु जी का प्रकाट्य हुआ जो कि हम प्रभु जी से हमेशा कथाएँ सुनते हैं। चूँकि सब भक्त लोग चले गए हमने भी 8-10 भक्तों को ही केवल इन्वाइट किया है उसमें से भी कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे कुछ भी पता नहीं। हाँ तो आप सभी जो है कृपया आइएगा अगर समय हो आपके पास। रोबोटिक हाल में प्रोग्राम है पूरा टाइमिंग 10 बजे से देखिए 12 बजे 12:30 तो एक बात और मैं बताना चाहता हूँ अपने विषय में कि 2-3 साल पहले हमने प्रभु जी का जन्मदिन मनाया था तो कुछ भक्तों ने प्रभु जी के बारे में कुछ कुछ बताना चाहा और बताया तो उस वक्त मैंने भी प्रभु जी के बारे में बताया कि प्रभु जी के प्रति मेरे इतने अपराध हो चुके हैं कि ये प्रभु जी की ही कृपा है कि मैं मतलब उनके सामने खड़ा हूँ ऐसा करके मैंने बोला था। तो अब इसका रिकॉर्डिंग किया था हमने लोकल इसी में तो रिकॉर्डिंग किया था तो अभी 6-7 महीने पहले मैं प्रवचन को मैंने कमरे में लगाया था वो नोटिफिकेशन तो उस पर मुझे चल रही थी नोटिफिकेशन उसमें कुछ और फिर जब मैं बैठा था बहुत देर से 1.5 घंटे से बैठा था और अचानक मैं खड़ा हो गया अचानक खड़ा हुआ तो उस पर यही बात आई जबकि मुझे कुछ भी पता नहीं था उस पर यही बात आई मैंने प्रभु जी के प्रति सारे अपराध मैं प्रभु जी की कृपा से खड़ा उनके सामने तो सभी भक्तों का आश्चर्य हुआ कि अभी मैं बैठा था और तुरंत ही खड़ा हो गया। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप आइए हरे
कृष्ण। श्री आमल की एकादशी व्रत महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।